दूसरा राजा अध्याय 14। अब हम फिर अमस्याह के समय में चलते हैं, जो अपने पिता योआश की मृत्यु के बाद राजा बना, जो अध्याय 12 के अंत में मार डाला गया था। अध्याय 14 पद 1 से लेकर 3 तक। इस्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोआदीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की दाई न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश से काम किए। ध्यान दीजिए, उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया। दाऊद सीधे सीधे उसका पिता नहीं था, परंतु उसका पूर्वज था। परंतु बाइबल में इस तरह नहीं दर्शाया गया है। मैं यहां इसलिए ये कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो ये विचार रखते हैं कि बाइबल में त्रुटियां हैं। अब दानियल की पुस्तक को लीजिए, जिस पर आलोचक विशेषकर आक्रमण करना चाहते हैं, क्योंकि ये पुस्तक उन लोगों को क्षति पहुंचाती है जो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने मनुष्यों से बात की। अब क्योंकि दानियल की भविष्यवाणी इतनी सटीक और इतनी जटिल है कि बाइबल आलोचक उसका कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक दानियल ने नहीं लिखी है, ये किसी और ने करीब 300 वर्ष बाद लिखी, जिसने दानियल का नाम उस पर लिख दिया। वो एक समर्पित जवान मनुष्य होगा जिसने इतने समय के बाद ये मनोहर कहानी लिखी। वो केवल इतिहास लिख रहा था, परंतु फिर उसने दानियल का नाम उस पर ऐसे लिख दिया कि जैसे दानियल ने ही ये पुस्तक लिखी हो। वे कहते हैं कि ये पुस्तक घटना के घट जाने के बाद लिखी गई थी। वो बहुत चतुर रहा होगा, क्योंकि उसने यीशु को भी छला। यीशु दानियल की भविष्यवाणी के संदर्भ में कहता है, मती 24 अध्याय 15 पद, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। इस तरह बाइबल आलोचक स्वयं को यीशु से अधिक योग्य समझते हैं, परंतु मुझे आश्चर्य नहीं होता। इसलिए मैंने कहा है, मैं इन सेमिनारियों और बुद्धिमान लोगों का कोई आदर नहीं करता, जिन्होंने धर्म शास्त्र में से परमेश्वर के कामों को हटा देने का भरसक प्रयत्न किया है। परंतु एक और बात जिसके कारण वे दानियल की पुस्तक में गलती निकालते हैं, वहां बेलशस्सर को नेबुकदनेस्सर का बेटा कहा गया है, जबकि वो उसका पोता था। इसलिए बाइबल आलोचक कहते हैं वहां बेलशस्सर को नेबुकदनेस्सर का पुत्र कहा गया है, पर वो उसका पुत्र नहीं था। उसका पुत्र था नबोपलेसर और बेलशस्सर पोता था, और इसी को वे मुद्दा बनाते हैं। बाइबल यहां अमस्याह को दाऊद का पुत्र कहते हैं, क्योंकि बाइबल में इब्रानियों के बीच दादा और परदादा का अक्षर नहीं है। वे सिर्फ पुत्र शब्द को कहते थे। उनके अनुसार जहां तक भी मेरी वंशावली जाएगी, वे मुझे पिता ही कहेंगे। इसलिए बाइबल सच्ची है और बुद्धिमान मनुष्य झूठे। बाइबल कहती है रोमियो 3 अध्याय 4 पद, परमेश्वर सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा ठहरे। मैं सिर्फ वचन से बोलता हूं। सांसारिक बुद्धि जब परमेश्वर के वचन के सम्मुख आती है तब व्यर्थ हो जाती है। मैं आत्मा से भरे व्यक्ति की बात सुनूंगा जो यूनानी का एक शब्द भी न जानता हो, परंतु परमेश्वर के सच्चे वचन को समझता हो, ना कि उसकी जो मूल भाषाओं के ज्ञान का आचार्य हो, परंतु नया जन्म ना पाए हुए हो, क्योंकि मैं अनपढ़ से अधिक आत्मिक सच्चाइयां सीख सकता हूं, ना कि उससे जो प्रधान आचार्य हो। पहला कोरिंथियों 2:14-15। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसलिए मैं आचार्यों की चिंता नहीं करता, उन्हें मिली प्रतिष्ठा हो या उन्होंने कमाई हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आत्मा की उस समझ और उन कार्यों की चिंता करता हूं जो हमारे हृदयों और मनों में वचन को प्रकट करे। इसराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमसाया राज्य करने लगा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसा न किया। अध्याय 14:4-5 में उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उनके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। आपको याद होगा, उसका पिता उसके सेवकों के द्वारा मार डाला गया, बदले में उसने उन सेवकों को मार डाला। तब वह एदोमियों के विरुद्ध लड़ने को गया, मृत सागर के करीब नमक की खाई में उसने 10,000 एदोमियों को मारा और पेत्रा का पथरीला शहर अपने अधीन कर लिया। अब वो स्वयं को काफी मजबूत और शक्तिशाली महसूस करने लगा। अध्याय 14:8-11। तब अमसिया ने इसराइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमसया के पास यू कहला भेजा कि लेबनोन पर की एक जड़बेरी ने लेबनोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लेबनोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस जड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता तो है, इसलिए तू फूल उठा है, उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में ही रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ उठाता है, जिसे तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमसिया ने ना माना। तब इसराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमसिया ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। ये गिलबा की पहाड़ों के पास वाला बेतशेमेश नहीं है। अध्याय 14:12-13। और यहूदा इसराइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इसराइल के राजा योआश ने यहूदा का राजा अमसिया को, जो अजया का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और यरूशलेम के शहरपना में से एप्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए या 600 फीट दीवार गिरा दी। अध्याय 14:14-15। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शमरोन को लौट गया। योआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति से यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, ये क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? आ बैल मुझे मार, कुछ लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं। कुछ चीजें होती है जिनको करने में आपको कोई लाभ नहीं होता, वरन स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। आपको फंदे में फंसने वाले कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप दुख ही उठाएंगे। अतः ये प्रश्न उचित ही है, हानि उठाने को क्यों हस्तक्षेप करते हो? मैंने एक बार दर्शन शास्त्र की कक्षा में मसीही नीति शास्त्र पर उल्लेख लिखा था, क्योंकि हमारा प्रोफेसर चाहता था कि हम इस विषय पर कुछ लिखें, इसलिए मैंने मसीहियों के नीति शास्त्र पर लेख लिखना तय किया। मैंने वैसे ही लिखा जैसे पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों में लिखा कि मसीह नीति शास्त्र किसी भी दर्शन से बड़ा है। पौलुस कुरिन्थियों को अपनी पत्री में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, अब इससे बढ़कर विशाल नीति शास्त्र आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने बताया था, इसलिए बहुत लोग मसीहत को सीमाबद्ध करके और पाबंदी लगाते हुए देखते हैं, परंतु वास्तव में सच्चा मसीही नीति शास्त्र बहुत विशाल है। पहला कुरिन्थियों 6:12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। एक मसीह के लिए लाभ का अर्थ फिलिप्पियों 3:14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं दौड़ रहा हूं, मैं जीतने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। कुछ बातें हैं जो निशाने की ओर मेरी दौड़ में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु मेरा लक्ष्य है कि निशाने को पाऊं, इसलिए मेरी उन्नति को बाधित करने वाली बातों के कारण मैं रुकता नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। वे बातें मुझे नरक में तो नहीं ले जाएंगी, ये नष्ट नहीं कर सकेंगी, परंतु वे मेरी दौड़ को बाधित कर सकती है, इसलिए मैं उन्हें कर सकता हूं परंतु करता नहीं, क्योंकि मैं अपने निशाने पर पहुंचने में बाधा नहीं चाहता। पहला कुरिन्थियों 10:23, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परमेश्वर की संतान होने के नाते मैं चाहता हूं मसीह मुझ में स्थापित हो, परंतु कुछ बातें हैं जो मसीह की छवि को बिगाड़ देती है। अब ये चीजें उचित तो है, मैं नियम अनुसार उन्हें कर भी सकता हूं, क्योंकि उनके करने से मैं नरक में नहीं जाता, तो भी वे मुझे मसीह से दूर ले जाती है, इसलिए मैं वैसा नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई काम मुझे फाड़ डाले। मैं केवल यीशु मसीह में बने रहना चाहता हूं। और अंत में वो निष्कर्ष निकालता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। ये मसीहत का विशाल नीति शास्त्र है, परंतु उसने कहा, पहला कुरिन्थियों 6:12, मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। मसीह होने के नाते मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता क्या है। बहुत कम लोग सच्ची स्वतंत्रता को जानते हैं। जो संसार के हैं वे स्वतंत्रता इत्यादि की बात करते हैं, पर नहीं जानते कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। वे अपनी वासनाओं में और उन चीजों में जो उनके पास है इतने लिप्त है कि स्वतंत्रता क्या है नहीं समझते। वे स्वतंत्रता का स्वाद पाकर अपने कार्यों के दबाव में आ गए हैं कि स्वतंत्रता क्या है। मैं स्वतंत्रता को इतना चाहता हूं कि मैं उसे किसी बात के दासत्व में आकर बलि नहीं करना चाहूंगा। यदि कुछ करने से मैं उसके दबाव में आ जाऊं, मैं उसके प्रभाव के नीचे आ जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता हूं। यदि मैं उसके दबाव में आ जाऊं तो मेरे पास ये महान नीति शास्त्र नहीं है जो कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। आप जानते हैं ये एक आशीष है, चीजों को देखना और कहना मैं वो कर सकता हूं पर करना नहीं चाहता या मुझे करने की आवश्यकता नहीं। मेरा वर्तमान संबंध यीशु मसीह के साथ ठीक है और मैं निपुण और संतुष्ट हूं और मैं कोशिश नहीं कर रहा कि ऊंची चीजें ऊंचे स्तर पर पाऊं। मैं यीशु मसीह में स्थिर हूं और इस तरह की स्वतंत्रता मुझे पसंद है जिसमें सामर्थ्य हो, परंतु किसी महत्वाकांक्षा के दबाव या इच्छा से नहीं। ओह, ये कैसी स्वतंत्रता है जो मुझे नरक में चाहे ना ले जाए परंतु वो मेरे स्वर्ग जाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। वो मुझे अपने कुप्रभाव के नीचे ला सकती है जो मैं नहीं चाहता। मैं आजाद हूं और आजादी मुझे पसंद है। परिणाम स्वरूप मेरे लेख के लिए मुझे प्रथम श्रेणी मिली। मेरी अध्यापिका हैरान रह गई। वो मसीही दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने पेपर पर हर जगह चिन्ह डाल दिए। वो अचंभित थी। वास्तव में जब मैंने उसके साथ बात की तो वो सचमुच में डरी हुई और हैरान थी। अपने ही घाव के साथ छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करने का परिणाम ये हुआ कि राजा ने आकर शहर पनाह गिरा दी और सुरक्षा खत्म हो गई। हमारे अनावश्यक कार्यों का फल एक सुरक्षा नष्ट हो जाएगी तो दूसरी बार आक्रमण करना आसान होगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी बार और अधिक आसान हो जाता है और फिर ये जीवन की सामान्य गतिविधि बन जाता है। पहली बार मुश्किल था, तुमने रोकने की कोशिश भी की परंतु व्यर्थ हुआ और आप जल गए। यही नहीं, तुम्हारी संपत्ति चली गई और हर बार आप अनावश्यक कार्य करके चोट खाते हो, कुछ गवाते हो, जैसे शुद्धता, सीधापन, सेहत, स्वच्छ मन आदि अधिकतर जाते रहते हैं क्योंकि लोगों ने व्यर्थ के कार्य करके अपने को चोट पहुंचाई है। अमसया की मृत्यु पद 17 में लिखी गई है। हम इसके बारे में तब पढ़ेंगे जब हम इसराइल के राजाओं के इतिहास में जाएंगे। अजरिया उसके बाद राजा बन गया। जब अजरिया ने अपने पिता का राज्य संभाला तब वो केवल 16 वर्ष का था। वास्तव में अमसया भी अपने पिता की तरह मार डाला गया और उसका पुत्र जो 16 वर्ष का था राजा बना। उसने अधिक कुछ नहीं किया परंतु उसने एलत शहर को दृढ़ किया और मर गया। अध्याय 14 पद 23। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमसया के राज्य के 15वें वर्ष में हमने देखा कि उसके बेटे ने उसका राज्य संभाल लिया। अब हम एक और कहानी देखते हैं। अध्याय 14 पद 23 में आगे लिखा है, इसराइल के राजा योआश का पुत्र यरोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा। ये उस समय की बात है जब आमोस और होशे दोनों भविष्यवाणी कर रहे थे। इसराइल का उत्तरी राज्य अंत की ओर बढ़ रहा था। हम लोग इस राज्य के आत्मिक पतन की अंतिम शताब्दी में चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने अधिक नबियों को भेजना आरंभ किया। यदि आप आमोस और होशे की भविष्यवाणियां पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ सकेंगे कि ये आत्मिक पतन किस समय में हुआ। यहां अध्याय 14 पद 35 में योना भविष्यद्वक्ता का वर्णन है। अतः परमेश्वर ने इस आत्मिक पतन के समय 3 भविष्यद्वक्ता उत्तरी राज्य में भेजे। ये यरोबाम दूसरा राजा है। पहला यरोबाम इसराइल का पहला राजा था, ये दूसरा राजा उसी के नाम से है। अध्याय 14 पद 23 में आगे लिखा है, और 41 वर्ष राज्य करता रहा। अध्याय 14 पद 26, क्योंकि यहोवा ने इसराइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा और ना इसराइल के लिए सहायक था, वे वीरान हो गए थे। अध्याय 14 पद 27 और 28, यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इसराइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा, सो उसने योआश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हामात को जो पहले यहूदा के राज्य में थे इसराइल के वश में फिर मिला लिया, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये पुस्तक हमारे पास नहीं है। अजरिया जो उज़िया भी कहलाता है, जब हम उज़िया के बारे में सोचते हैं तब हमें यशाया याद आता है, जिसने अपनी भविष्यवाणी उज़िया की मृत्यु से आरंभ की। उज़िया ने 42 वर्ष राज्य किया और यशाया के अध्याय 6 पहले पद में, जिस वर्ष उज़िया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। कहने का अर्थ यह है कि यशाया की सेवा का आरंभ राजा उज़िया की मृत्यु से होता है।